તારીખ 13/7/1993 શ્રી પરમાગમ સાર બોલ નંબર 210 અને 263 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 65
શૂન્ય દર્શન કે કારણ જો પુરુષાર્થ હૈ ઉસકી વાત યહાં ચલી હૈ દ્રવ્ય સ્વભાવ કા विश्वास आ रहे इतना सामर्थ्य है मेरे पे अनंत सामर्थ्य है उसका ज्ञान मैंने राग की प्रधानता छूट करके ज्ञान लक्षण के आधार से जो ज्ञान होता है वो निश्चय रूप ज्ञान होता है स्वरूप निश्चय रूप ज्ञान किसी को यहाँ ज्ञान कर ऐसा ज्ञान होने से तीव्र रुचि उत्पन्न हुई स्वभाव की और स्वभाव लक्ष्य में आ गया ऐसा हुए तो पुरुषार्थ का एक वेग है वो स्वभाव चालू हो जाए सहज रूप से करना नहीं पड़े पुरुषार्थ करना पड़े वो पुरुषार्थ का स्वरूप ही नहीं पुरुषार्थ सहज होने का कारण कि वस्तु ज्ञान में आ गई हो इसलिए स्वरूप ज्ञान ही पुरुषार्थ का उत्पादक होता है कोई नियम ऐसा कहे स्वरूप तो ज्ञान में आता है लेकिन पुरुषार्थ नहीं चलता तो ये ज्ञान की वास्तविकता नहीं क्या वो ज्ञान की वास्तविकता नहीं वो ज्ञान की एक कल्पना है कि मेरे ज्ञान में आत्मस्वरूप समझ में आता है वास्तविकता तो वो है कि स्वरूप ज्ञान में आते ही एक ज्ञान बल पैदा हो जाता है ज्ञान बल उत्पन्न हो जाता है उसी को ही सही ज्ञान कहें या वास्तविक ज्ञान कहें वरना वास्तविक ज्ञान इसलिए यहां गुरुदेव ने ऐसा शब्द प्रयोग किया है कि वीर्य गुण के परिणमन में स्वभाव सन्मुख की स्फूर्णा चालू हो जाए चलती ही रहे चलानी नहीं पड़े लेकिन चलती रहे यह सम्यक पहले की बात है सम्यक दर्शन हुए उसके पहले ऐसा होता है ये पूर्व पर्याय का क्रम है और ये नियत क्रम है ऐसा ही हुए दूसरे प्रकार के पर्याय हुए और सम्यक दर्शन हुए ऐसा कभी नहीं बनता यही सम्यक दर्शन का उपाय है दूसरा कोई सम्यक दर्शन का उपाय है ही नहीं तो वो नियत हो गया ना ऐसा ही उपाय है दूसरा कोई उपाय दूसरे प्रकार का कोई उपाय नहीं इसलिए जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है या हमको प्राप्त होना चाहिए तो हमें स्वभाव को लक्ष्य में लेना चाहिए इसकी रुचि होना चाहिए इसकी प्रतीति स्पष्ट अनुभव से आनी चाहिए
एक बात तो कर देते हैं दोष को देख करके निकालो और एक बात देखकर देते हैं कि स्वभाव को देखो
हाँ तो दोनों तो सापेक्ष है स्वभाव निर्दोष है स्वभाव कैसा है दोष रहित है तो दोष का ज्ञान और स्वभाव का ज्ञान सापेक्ष हो गया ना एक का होगा एक का नहीं होगा ऐसा कभी बनेगा क्या? तो उसकी बात तो क्या है कि जिसकी भूमिका में स्वभाव को देखने की नहीं है, ज्ञान में क्षमता जिसको नहीं आई उसको ऐसा कहेंगे कि पहले मोटी बात देखो, सूक्ष्म सूक्ष्म तत्व देखने में आएगा, पहले स्थूल चीज देखने में आएगी। तो वो तो क्या है कि वर्तमान मुमुक्षुओं की ऐसी योग्यता कमजोर है तो ऐसा कहना पड़ता है। अब तो दोषी पूरा नहीं दिखता है तो स्वभाव तो दिखेगा ही कहां से, पहले दोष दिखेगा, इसके बाद अगर उपयोग सूक्ष्म होगा तो ज्ञान सामान्य में वेदन ग्रहण होगा, फिर वेदन पर से सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वभाव ग्रहण होगा, ऐसा भी क्रम आएगा।
उत्कृष्ट पात्र का भाव वासन के होने के बाद ही प्रसाद शुरू होता है, उसके पहले मध्यम पात्रता में
उसके पहले जिज्ञासा रहती है कि मेरा स्वरूप कैसा है, अनादि से मेरा स्वरूप मेरे जानने में नहीं आया। तो जिस स्वरूप से मैं अनजान हूं, अनभिज्ञ हूं, तो मेरा स्वरूप कैसा है इसकी जिज्ञासा पहले उत्पन्न होनी चाहिए। तो पहले जिज्ञासा में रहता है तो स्वरूप को ज्ञान, स्वरूप को ज्ञान में आवे नहीं, और मैं गया है हूं, मैं गया है हूं, मैं गया है हूं करे तो कहां से मेरा ग्रह प्रसाद चलेगा। वाली चीज नहीं है, न्याय की कल्पना हो जाएगी और रटन हो जाएगा, लेकिन प्रसाद चलने वाला नहीं है।
उल्टा चलता है
जो बात यहां गुरुदेव कहते हैं तो अपने अनुभव से कहते हैं, फिर हमारी बुद्धि हम लगा करके नई बात कैसे खड़ी करते हैं, क्यों करें, क्या जरूरत है? हमारे हार्ट स्पेशलिस्ट हमको कहेंगे कि तुमको सोते रहना है, अभी तुमको चलना नहीं है, फिर हम इसकी सूचना के अनुकूल चलेंगे या वो भले कहे हम थोड़ा चले तो क्या बात है, मर जाएंगे क्या बोले। बात तो विषय तो उनका है, उनमें हम दूसरा दूसरा तर्क उठाए कि क्या फायदा करेंगे। जो जिस विषय के अनुभवी है, जो मार्ग पर चल के कहते हैं कि मार्ग किस तरह से मार्ग पे चलना है, तो मैं उसका अनुसरण करना चाहिए। मुमुक्षु वो है, एक पात्रता का एक खास लक्षण वो भी है कि उनका एक निर्णय रहता है, निश्चय रहता है कि मुझे गुरु आज्ञा का उल्लंघन कभी भी करना नहीं है। सुभाष भाई कोई लंबे थोड़े शास्त्र नहीं पढ़े थे, सिद्धांत नहीं पढ़े थे, लेकिन कोई विशिष्ट पात्रता थी उनमें, तो वो थी कि ज्ञानी के मार्ग पर चलने का उसका निश्चय दृढ़ था, उतना ही नहीं कितना दृढ़ था, अद्भुत दृढ़ था। बात यह हुई है कि उनका देहांत होने के बाद उपालु ने उनके परिवार पर एक चिट्ठी और वो 782 नंबर का पत्र है। पत्र का मथाला लिखा है श्री सौभाग को नमस्कार। क्या इनके परिवार को लिखते हैं और इनकी अनुपस्थिति में लिखते हैं? जैसे अपन श्री नमस्त्री स्वरूप गुरुदेव आए ऐसे लिखते हैं, नम जिनेन्द्राय, उन्होंने श्री सुभाग को नमस्कार ऐसे हेडिंग लिखा है। श्री सुभाग की मुमुक्षु दशा और ज्ञानी के मार्ग प्रति के इसका अद्भुत निश्चय बार बार स्मृति में आते रहते हैं। हमको वो कहते हैं कि हमको उसकी स्मृति कैसे होती है कि वो एक ऐसे मुमुक्षु थे विशिष्ट पात्रता वाले कि उनका एक अद्भुत निश्चय था, साधारण निश्चय नहीं था, एक अद्भुत निश्चय था कि ज्ञानी के मार्ग पर ही चलना चाहिए, हमारा दूसरे प्रकार का विकल्प स्वच्छंद के सिवा कुछ नहीं है। क्या ये हमारा स्वच्छंद है? हमें स्वच्छंद बिल्कुल करना नहीं है, ये इसका अद्भुत निश्चय है। और यही इनके आत्मस्वरूप प्राप्ति का मुख्य कारण भी यही था, इसलिए उन्होंने जो भी कृपादेव से मिला उतार लिया। क्यों? तो उसका अद्भुत ऐसा निश्चय था कि जो भी है मुझे तो सिरोधार्य करना है, हृदय में उतार लेना है, मेरा तो उतना ही काम बस पात्र। लिया ना कि दिन में कहे कि वो अमास की रात्रि है, ऐसी बात है, ऐसे ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो यही एकमात्र उपाय है, जो क्रम से वो चले, जो अनुभव उन्होंने कहा किया वो कहा, हमें इसी मार्ग पर चलने का हमारा प्रयास होना।
ये जिज्ञासा के दौर में मुमुक्षु की जैसे ये जिज्ञासा की भूमिका ऐसा प्रेरणा बन जाता है।
जिज्ञासा मैंने क्या है कि बहुत कीमती चीज मिलती नहीं है, जैसे हमारा 10 लाख का हीरा हाथ में से गिर जाए देखते देखते छोटी चीज है, क्या हालत होगी? एक दफे तो आकुलता में से पसार होना पड़ेगा, विरह की वेदना होगी तभी ही इस वेदना का इलाज होगा। जहां तक विरह की वेदना अपने परमात्मा की नहीं होगी तो परमात्मा का दर्शन होने वाला बीच में ऐसी चीज आती है जिसको दर्शन परिसर कहते हैं, ज्ञान परिसर कहते हैं। ऐसी वेदना हुए बिना किसी को प्राप्ति हुई भी नहीं और किसी को आगे होने वाली भी मुमुक्षु की भूमिका में ये परिस्थिति एक दफे तो आती ही है। हमारे संयोग की वेदना वियोग होता है, एक लड़की को गांव में भी शादी करके पता है कि कल तो उसको घर पे वापस ले आना है, खाना खाने को, दवाई को, इनको, लेकिन आज उनको जाते वक्त क्या हालत होती है इसके माँ बाप की है? तो वहां तो होता है, और हमारे परमात्मा उसका वियोग के लिए इसका वियोग भी हमें कोई दर्द नहीं होता है, तो इसका मतलब कि हमें उनकी आवश्यकता भी नहीं है। योग लगना चाहिए, लगना चाहिए, तीव्र वियोग लगना चाहिए, जिसके बिना काम होने वाला ऐसे ऐसे बहुत न्याय हैं। जैसे गोपाल देव ने विष्णु ना लिखा है, हे प्रभु हे प्रभु विष्णु, बहुत पावनता के बाद अपने योग किया है। कदमादम अति भूपति सकल जगत में मैं ये निश्चय आया बिना साधन कर। परमात्मा तीन लोकनाथ में हूं, कहां वो बात, और अधमा अधिक अधिको पतित मैं हूं, कहां वो बात, लगती तो उल्टी सुलटी। लेकिन पहले हम ऐसे अभिमान के घोड़े पे चढ़ गए हैं कि मैं तो फलाना हूं, मैं तो फलाना हूं, मैं कोई कम नहीं। तो इस घोड़े से पहले तो नीचे उतारते हैं, जब ही मैं तीन लोग का नाथ हूं इस घोड़े पे चढ़ने का अवसर आता है। दो घोड़े की सवारी कभी होती नहीं, तो संसार के घोड़े पे तो चढ़ा हुआ है, यहां से पहले नीचे उतारते हैं। जैसी भूमिका है ऐसा उपदेश है। एक उपदेश सबको लागू नहीं होता और सभी उपदेश एक को लागू नहीं होता, एक वास्तविक परिस्थिति है। मेडिकल स्टोर की सभी दवा खा लें तो रोग मिटे, मर जाए, क्या हो गए, मर जाए, दवाई खावे तो भी मर जाए, क्योंकि उसमें तो पॉइजनस भी दवाई होती है। जिस डॉक्टर जिस दवा को देवे, जिस मात्रा में, जिस काल में, जिस टाइम पे जितनी लेनी हो उतनी लेनी पड़े, उसमें हम डॉक्टर की सूचना अनुसार चलेंगे। मुंबई गए थे और विश्वदास हॉस्पिटल में, बोले कि भाई आपको 10 फीट दूर रह करके बात करना है और आपकी जो चप्पल है वो छोड़ करके वो स्टरिलाइज जो है रखे हैं वो पहनना है, उनके पट्टी बांधना है, स्ट्रिक्ट जितने भी इंस्ट्रक्शन है स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। क्यों, दर्द सीरियस, उसमें कोई गफलत रहे तो जान का जोखिम हो जाता है क्या। तो एक एक सूचना डिटो टू डिटो शब्द सा पालन करनी पड़ती। तो शरीर के लिए तो हम पालन करने के लिए तैयार है और श्री गुरु की सूचना आत्मा के लिए मिलती है, आज्ञा मिलती है, तो हम हमारे दिमाग को तर्क लगाते हैं, तर्क लड़ाते हैं, ऐसा नहीं ऐसा क्यों, ऐसा नहीं ऐसा क्यों, फायदे की नुकसान की है, ऐसी बात हो तो इससे भी सीरियस है। हमारा केस तो इससे भी सीरियस है। तभी वो विचार आया था, देखिए शरीर के लिए कितना फॉलोअप करना पड़ता है, ऐसे जो हम श्री गुरु की आज्ञा को फॉलोअप करें तो हमारा तो निबेड़ा हो जाए। लेकिन वहां गंभीरता दिखती है, यहां गंभीरता दिखती है, यही ट्रेजेडी है। इसके बाद कौन सा संख्या 69 रचना मत 263 प्रश्न किसी ने उठाया है। आत्मा पर पदार्थ में तो कुछ फेरफार न कर सके, वो तो ठीक, मैंने वो तो बात आपको समझ, पर पदार्थ में एक परमाणु पर भी आत्मा का अधिकार नहीं है, और आत्मा चाहे ऐसा उपरिणता नहीं, जैसा उसका परिणमन होने योग्य है ऐसा होता है। आत्मा शरीर का भी एक परमाणु पर अधिकार रख सकता, उसको बात सम्मत किया, वो बात को मानी, किंतु अपने पर्यायों में फेरफार करने में भी अपना काबू मैंने अपनी आधिकता है कि नहीं है, हमारे वश में हमारे परिणाम है कि नहीं है, है क्या अनुभव कर लीजिए। एक चीज का स्मरण नहीं करना, ऐसा बोले कि आपको इस चीज का स्मरण नहीं करना है तो दूसरी सेकंड में वही चीज का स्मरण हो जाएगा, ये तो अनुभव सिद्ध बात है। फिर प्रश्न किसको कर किसका करते हैं, प्रश्न में गर्भित बात वो है कि हम तो हमारा आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, क्या हम हमारा आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते, हमारी वो पर्याय है, हमारी पर्याय अभी आत्मा कल्याण रूप नहीं है, दुखी है संसार में, हमारा कल्याण करके हमें सुखी होना है, तो क्या हम वो नहीं कर सके, ऐसा प्रश्न है। कल्याण करना एक इच्छा है, हम चाहें इच्छा करें ऐसा नहीं होता, ऐसा कहने का अभिप्राय। बाकी जो भी पदार्थ के गुरुधर्म है उसी के अनुसार अवस्था की कोई परिस्थिति बनती है तो स्वतः ही अवस्था जैसे होनी चाहिए वैसी हो जाती है। उत्तर, अरे भाई जहां द्रव्य का निश्चय किया वहां वर्तमान पर्याय स्वयं द्रव्य में वर्ण चली गई, द्रव्य में ही चली गई, द्रव्य की ओर चली गई, द्रव्य का निश्चय करने वाली पर्याय द्रव्य की सन्मुख होकर के ही तो निश्चय करती है, और द्रव के सन्मुख होना यही आत्म कल्याण है। अब कल्याण करने का कहां बाकी रहता है, सही में कल्याण स्वरूप है। तो पर्याय का निश्चय किस तरह से किया, द्रव के सन्मुख होकर किया या ऐसे ही कर दिया, पर्याय का सही निश्चय द्रव्य का निश्चय होने से होता है। द्रव्य का निश्चय नहीं हो उसको पर्याय का सही निश्चय होने वाला नहीं है। ये निश्चय के विषय का एक कानून है, पर्याय का सही निश्चय द्रव्य का निश्चय हुए बिना हो सकता नहीं। निश्चय करने के पहला कंडीशन वही है, तो पहले तो द्रव्य का निश्चय करें नहीं और पर्याय में हम कल्याण करें कि नहीं कर सके। वो बात कोई समझदारी की नहीं है, ऐसा कहते हैं। जब पर्याय द्रव्य में द्रव्य की ओर हो गए फिर तुझे किसको फिर आना है, उसको भी फिरा देना है क्या, द्रव्य सन्मुख वाली पर्याय को भी घुमा देना है क्या, वो तो बात ही नहीं रहती। मेरी पर्याय द्रव्य में अंतर्मुख हो गई, वह पर्याय अब क्रमशः निर्मल भी होने लगती है, क्रमशः स्वतः ही आपो आप निर्मल होने लगती है और शांति बढ़ती जाती है। जो स्वयं ठीक हो रही है उसको फिर तुझे उसमें तुझे क्या करना है, जैसे कोई अपने यहां हमारा नौकर वो बराबर परफेक्ट काम करता है अपना, फिर हम उसको हिला करते हैं हम उसको पिंचिंग करेंगे क्या, और उसको पिंच करेंगे तो क्या हो जाएगा, काम बिगड़ेगा। जो काम बराबर करता है आदमी, तूने बराबर किया कि नहीं किया, ऐसा करो तो वैसा करो, ये काम बिगाड़ने का रास्ता है। जो काम आदमी बराबर होशियार है, बराबर करता है, तो उसमें मालिक भी हस्तक्षेप करना नहीं चाहेगा। वो समझता है हस्तक्षेप करने से काम बिगड़ेगा। ऐसे जब पर्याय ठीक हो गई दृढ़ सन्मुख होकर के, और अपनी शांति बढ़ती रही, निर्मलता बढ़ती रहती है, तो उसमें क्या हस्तक्षेप करना है, कि उसमें कोई हस्तक्षेप करना
नहीं
है। प्रवृत्ति और कैसे हो ऐसा जान करके, जैसे हो वैसा करें। चूंकि आत्मा एक वैज्ञानिक पदार्थ है, वैज्ञानिक इसलिए कि इसके गुण धर्म इसमें है, पदार्थ का स्वयं का विज्ञान है, वो अपने विज्ञान के अनुकूल कार्य करेगा या हमारी इच्छा के अनुकूल कार्य करेगा, तो इनके विज्ञान को हम समझे, उसी अनुसार कार्य होने में तो कोई आपत्ति नहीं।
वर्तमान पर्याय की बात, अभी जो चालू परिणमन हो रहा है, तो उसमें हम कुछ फेरफार नहीं कर सकते।
उसमें फेरफार करने की इच्छा से फेरफार नहीं होगा क्या भी? उसमें हमारी इच्छा ऐसे, वर्तमान पर्याय हमारे संसार के चंद्र के चलो, हम चाहते हैं कि अभी हमको अनुभव हो जाए, अभी हमारा केवल ज्ञान हो जाए, क्या वो इच्छा कामयाब हो सकती है, सफल हो सकती है? लेकिन जैसे सम्यक दर्शन होता है, उसी क्रम से इस क्रम को हम ग्रहण करें या इस क्रम को हम अपनाएं, तो बात बराबर होगी। इसका विज्ञान समझना पड़ेगा और विज्ञान के अनुकूल काम होगा। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है, अब हमारी गाड़ी बराबर 50, 60 या 70 किलोमीटर पर चल रही है, पर हमें 100-200 किलोमीटर दूर जाना है, गाड़ी तो बराबर स्पीड में आई, टॉप गियर में चल रही है, अब हम 15 मिनट में कोई शंका करेगा कि क्यों हमारा डेस्टिनेशन नहीं आया? जो 100-200 किलोमीटर जाना है, वो तो घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटा, जो भी स्पीडोमीटर के हिसाब से लगने वाला है, वो तो लगेगा ही। अब हम कभी ऐसी इच्छा करते हैं कि आधा घंटा हो गया, हमारा स्टेशन क्यों नहीं आया? समझदार तो नहीं करेगा। जो स्पीड को समझता है, जो इसके विज्ञान को समझता है, उसको ऐसा विचार कभी नहीं आएगा, क्योंकि स्वस्थान में नहीं होता है, अस्थान में होता है। वस्तु के स्वरूप को नहीं समझ करके प्रश्न होता है, वस्तु स्वरूप को समझे तो प्रश्न होने की जगह है ही नहीं। इसलिए ज्ञानी को कभी असमाधान नहीं होता। जिसने दृढ़ स्वभाव का ज्ञान किया, ऐसे ज्ञानी को कभी असमाधान नहीं होता। जो वस्तु विज्ञान को नहीं समझते हैं, उनको असमाधान होता है, उसको प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि उसको पदार्थ का विज्ञान का पता नहीं है। ये सीधी सादी बात है।
अज्ञानी माने ज्ञानी के लिए, अज्ञान में से अज्ञानी में से ज्ञानी कैसे होता?
हम पहले कुछ नहीं पढ़े थे, एक पीछे पढ़ने लगे कि नहीं पढ़े, नहीं पढ़े इसलिए पढ़ नहीं सकते, वो बात तो नहीं है। हमारी जिज्ञासा है, हमारी भावना है, तो हम ज्ञानी हो सकते हैं, क्योंकि हमारी भावना से हम यही रास्ता ढूंढेंगे कैसे ज्ञानी हुआ जाए, उसमें क्या क्या बात होती है, कैसे कैसे बात होती है, पहले उसकी समझ करेंगे, फिर इस समझ के अनुकूल हमारा परिणाम होंगे, अगर करेंगे तो काम होगा, नहीं करेंगे तो काम नहीं
होगा।
हाँ फेरफार हुआ, ऐसा फेरफार तो होता ही है, पर्याय तो हर समय फेरफार वाली होती ही है। फेरफार होना पर्याय का स्वभाव है, करना नहीं पड़ता, लेकिन होता है स्वयं। तो स्वयं कैसे होवे, ये तो पुरुषार्थ का 210 चला। पुरुषार्थ सहज कैसे उत्पन्न हो जाए, ये तो बात चली। काम तो सहज होने वाला है, पर तू तो बुद्धि से कोई काम होने वाला नहीं। इस रीति से पर्याय स्वयं जहां द्रव्य में अंतर्मग्न हो गई, वहां उसको फेरफार करने का कहा रहा। हम तो द्रव्य का तो ज्ञान करें नहीं, और पर्याय में फेरफार करने का हम विचार करते रहे। अच्छा, बात तो ये चले कि अज्ञानी में से तो ज्ञानी होना है, इतना तो फेरफार करना है, तो इतना फेरफार करने की इच्छा से कोई फेरफार हो जाएगा क्या? ज्ञानी में से कोई ज्ञानी हो जाएगा क्या? कि नहीं। कैसे होगा कि द्रव्य का ज्ञान करेगा तो पर्याय का ज्ञान हो जाएगा क्या? कैसे पर्याय में सभी प्रश्न होता है, कैसे अनुभव होता है? तो द्रव्य का ज्ञान करने को कहा, द्रव्य का ज्ञान करो, बाकी पर्याय का स्वतः ही जो क्रम है उसमें वो शुद्धता आई जाएगी। ऐसा ज्ञान करो, उसमें कोई बाधा नहीं।
अभी पढ़ने जा रहे हो कि उसको हम पुरुषार्थ करके स्वामी लाने का प्रयत्न
कर तू तो बुद्धि से क्या? ये हमारा सवाल, कर्तृत्व बुद्धि से क्या? कर्तृत्व बुद्धि से ये नहीं होगा, ये बात जरूर है, साफ है।
कैसे होगा? अंदर में जाना तो है,
अंदर में जाना है वो आपकी इच्छा है, लेकिन अंतर तत्व को जाने पहचाने बिना जाएंगे कहाँ? आत्मा जो अंतर तत्व है उसको पहचाने बिना अंदर में जाएंगे कहाँ जाएंगे? अंदर माने क्या? ये सवाल पहला। इसलिए सबसे पहले अपने स्वरूप को जानो, पहचानो, यही बात पहले आती है।
इसमें ये एक ही इच्छा है कि और भी कोई इच्छा है?
नहीं,
इसमें भी ये एक ही इच्छा है कि और भी कोई इच्छा है?
कुछ भी इच्छा, इच्छा होने से कोई काम होने वाला नहीं है। इच्छा के इच्छा से कोई काम बन जाता है, ऐसी कोई वस्तु स्थिति नहीं है। वस्तु स्थिति तो ऐसा है कि जैसा विज्ञान है, वो विज्ञान की विज्ञान अनुसार काम होने वाला है, दूसरे ढंग से कोई काम होने वाला नहीं है, ये बात साफ है।
जानना पहचानना वो तो गुरु क्रम से और आगम से होगा ना?
शुरू में एक ऐसा क्रम है, प्रारंभ में कोई ऐसा क्रम है, लेकिन वो भी कब के हमारी पात्रता होती है तब। पात्रता के उपादान की प्रधानता उसने रखी है। अगर हमारी पात्रता नहीं है, हमारी जिज्ञासा नहीं है, तो अनंत बार गुरु मिला भी है, लेकिन उसमें पर गुरु ने समझाया भी है, लेकिन हमारी समझने की तैयारी नहीं रही, तो गुरु का संग हो निष्फल हुआ, बेकार हो गया, ये भी अनंत बार बना है। ये बात साथ साथ में है। पात्रता वाले को ऐसा योग से योग बैठ जाता है, नहीं बैठता है तो बैठाने के लिए उसको भावना रहती है कि कब कोई जानकार मिले और मैं अपना आत्मकल्याण का रास्ता समझ को अच्छी तरह समझ सके, और जैसा वो समझाए वैसा ही वो रास्ता पर मैं चलने के लिए तैयार हूँ, इसलिए वो उसको ढूंढने का उसको एक भाव आए बिना रहता नहीं है। जरूरत है इसलिए जरूरत में कोई तर्क काम नहीं करता, जरूरत में तो चाहिए चाहिए और चाहिए, फिर मिले नहीं मिले तो प्रारब्ध आधीन है, वो कोई इच्छा के अधीन नहीं तो प्रारब्ध आधीन होता।
ज्ञानी बनने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्ञानी बनने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है,
इसकी जरूरत नहीं है,
कुछ भी कार्य करने की जरूरत नहीं,
वो सब हो जाता है। ज्ञानी बनने के लिए ज्ञानी बने ऐसा कोई स्वतः ही क्रम जो है, वो क्रम से वो काम होता रहता है, होता है तो काम बन जाता है।
गुरुदेव ने कहा कि कुछ नहीं करना उसमें ही पहुंच करना,
अगर कुछ नहीं करना मैंने कुछ करने का कर्तृत्व नहीं करना, पर्याय तो एक कार्य है और वो कार्य तो हुए बिना एक सेकंड भी रहती नहीं, इसलिए पर्याय का परिणाम बंद कर दो, ऐसा कोई गुरुदेव ने नहीं कहा। लेकिन जो परिणाम पर्याय का परिणाम स्वतः चल रहा है उसमें तुम हस्तक्षेप मत करो, क्या कहते हैं कि उसमें तुम हस्तक्षेप मत करो, द्रव का निश्चय करके तुम पर्याय से उदास हो जाओ, वो स्वतः अपना कार्य करती है, ऐसी बात है।
तो बहिर्मुख दृष्टि छोड़कर अंतर्मुख दृष्टि कर सकते
हैं,
बहिर्मुख दृष्टि छोड़कर अंतर्मुख दृष्टि कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते,
नहीं कर सकते,
तो फिर वो भी पर्याय का तो परिणाम है।
लेकिन ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा निश्चय द्रव का निश्चय पूर्वक किया या पर्याय का निश्चय से पर्याय का निश्चय किया, सवाल वो पैदा होता है। सबसे पहले गुरुदेव ने क्या बोला तो उस पर ध्यान देना है कि द्रव को नक्की किया कि नहीं किया, इसके पहले ये सब प्रश्न उठाते हैं, तो इसलिए वो बात की जो समझ है वो बैठती नहीं है। द्रव का निश्चय होने के बाद ये कोई प्रश्न उठने वाला नहीं है, तो उसको तो हम छोड़ दें, फिर ऐसा करे कि नहीं करे, ज्ञानी बने कि नहीं बने, अंतर्मुख होवे कि नहीं होवे, प्रसाद करे कि नहीं करे, द्रव का निश्चय किए बिना या करके, अगर करके हैं तो प्रश्न खत्म, द्रव का निश्चय नहीं करके प्रश्न उठाएंगे तो ये प्रश्न का समाधान होने वाला टेक्निक है इसमें। इसलिए सबसे पहले वो बात मुख्य रखी है कि तुम द्रव का निश्चय करो, फिर पर्याय के विषय में तुम्हें कोई असमाधान रहने वाला नहीं। गुरुदेव ने खास इस विषय को बोला कि हमारा इस विषय का कोई मूल सिद्धांत है तो वो है कि मैं त्रिकाल नायक द्रव हूं, फिर पर्याय क्रमबद्ध हम कहते हैं, इसके पहले हम पर्याय क्रमबद्ध ऐसा कहते ही नहीं, तो हम आधी पकड़े आधी बात छोड़ दें तो बात पूरी सुनते नहीं है। जैसे कल एक भाई आए थे, बात ही पूरी नहीं सुने कैसे समझे, ऐसे हम ऐसा ही कर लेते हैं कि बात तो पूरी सुने नहीं और अधूरी सुन करके फिर हम प्रश्न उठाते रहे जैसे वो उठाते रहे, यही हालत हमारी होती है। इसमें और हमारे में कोई फर्क नहीं रहा, ये बात है, ये सब्जेक्ट टू कंडीशन है। पर्याय का स्वतः कार्य होता है, उसमें करना धरना नहीं रहता, ये बात सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि मैं यात्रिकाल नायक द्रव हूं, ऐसा आने पर वो बात समझ में आती है, ऐसा नहीं आने पर वो बात समझ में आएगी नहीं, और हम तो ऐसा किए बिना वो बात की समझ पूरी करना चाहते हैं, ये बात समझ में आने वाली नहीं है, ऐसी बात है। देखिए एक दूसरा दृष्टांत बहुत अच्छा है जो गुरुदेव देते थे कि हमारे कंपाउंड में, मकान के कंपाउंड में एक आम का पेड़ है, आम के पेड़ पे पहले फूल आता है फिर छोटी छोटी आम बैठती है, अपने खाकटी कहिए छोटी छोटी इतनी इतनी, हम देखे कि बहुत अच्छा बहुत से आम बैठ गई है, अब ये बड़ी हो जाए, इतनी इतनी बड़ी हो जाए और फिर वो पक जाए तो उसमें से मीठा रस है, वो आम रस हम खा सकते हैं। तो ऐसा हो जाए वो हमारी इच्छा है, तो हम कर सकते हैं उसमें कुछ क्या? तो कहेंगे कि भाई उसके लिए क्या करना है, हमें तो रस चाहिए, आम बड़ी भी होनी चाहिए और इसका रस भी हमें चाहिए, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए उसके पास जाकर के उसको कुछ छूना है, कुछ स्पर्श करना है, उसको कोई बड़ी बनाना है, कोई इसको इंजेक्शन देना है, क्या उसको पानी देना है, क्या उसको खाद देना है, क्या करना है उसको? कुछ नहीं करना है। उसका वो विज्ञान है कि उसके वो आम के पेड़ के मूल में तुम खाद भी दो और पानी भी वहां दो, कहां? मूल में, तो ये बड़ी हो जाएगी, उसमें रस भी आ जाएगा।
अपने समय से ही बड़ी,
लेकिन हाँ भले अपने समय से ही होगी, ये बात सही है, इसके क्रम में होगी, ये भी इसके क्रम में होगी, क्योंकि इसका विज्ञान है क्रम का। तो आज पानी दिया, आज खाद दिया और आज वो बड़ी हो गई और आज उसमें रस आ गया, ऐसा बनने वाला नहीं है। मेरा तो मुद्दा वो है कि पानी हम मूल में देंगे तो ऊपर पानी कब पहुंचेगा? हाँ तो एलिवेटर भी नहीं लगाया तो पानी जल्दी पहुंचा दे, या मोटर चालू कर दे पानी नीचे रख करके, इलेक्ट्रिक मोटर चालू कर दे, ये कभी ऊपर पहुंचे, कभी बड़ी होवे और कभी हम खाए, बिल्कुल उसमें तो मुझे धीरे चाहिए कि जब भी पानी ऊपर पहुंचेगा तभी बड़ी होगी, तभी उसका रस आएगा। जाएगा सही, उसके जाने का जो चैनल है वही चैनल से तुमको पानी पहुंचाना होगा, तुम्हारी चैनल इसमें काम नहीं आती, ऐसा ही विज्ञान है। अगर तुम बाल्टी लेकर के वहां लगा दो, हाँ बाल्टी को वहां बांध दो और उसमें उसको डुबा दो, क्या होगा? बिगड़ जाएगी, खाने लायक नहीं रहेगी, बड़ी भी होगी नहीं, ऐसी हालत में बिगड़ जाएगी। ऐसे तुमको पर्याय में शांति चाहिए, पर्याय में सुख चाहिए, पर्याय में निर्मलता चाहिए, लेकिन पर्याय का मूल तो द्रव है, जो तुम्हें श्रद्धा ज्ञान का सिंचन करना है वो द्रव द्रव का करना है, पर्याय स्वतः होती है, ये कहने का अभिप्राय। पर्याय का प्रभाव स्थान उद्भव स्थान कौन है? द्रव है, तो वहां सिंचन करना पड़ता है। सीधा पर्याय को सुधार करने को जाता है तो वो पर्याय को बिगाड़ता है, और ये सुधरती नहीं है, बिगड़ती है, ये एक साइंस है इसका। जैसा वो आम का विज्ञान है वैसा ये पर्याय का विज्ञान है, फिर इसमें तर्क क्या? हम पानी जल्दी से पहुंचाते हैं, हम वहां बाल्टी रख देते हैं, तो ऐसा नहीं चले उसमें, वहां पानी मूल में देना पड़ेगा, भले ही 15 दिन लगे, भले ही 1 महीना लगे, लेकिन काम तो अपने ढंग से होगा, तुम्हारे इच्छा के राग के ढंग से नहीं होगा। ऐसे पर्याय सुधारना है, वो एक राग है, पर्याय संबंधित इच्छा है, लेकिन काम अपने विज्ञान से होगा, काम इच्छा से नहीं होगा, यही कहने का अभिप्राय है यहाँ कि तेरी पर्याय तू फेरफार कर सकता है, काबू है कि इच्छा के काबू में नहीं होता, अपने विज्ञान के काबू में है अवश्य, लेकिन इच्छा के काबू में नहीं है, ऐसी बात है।
ध्यान करने से कुछ कर सकता ही नहीं, बिना ध्यान किए और कुछ कर सकता ही नहीं, जानने के अलावा और कुछ कर नहीं सकता,
क्या कर सकता है? और ये उसका सतर स्वभाव है, वो भी करना कहाँ है, होता है, वो ऐसा होता है कि तुम बंद नहीं कर सकते हो, फिर करने की बात कहाँ रही? जो गाड़ी को तुम रोक नहीं सकते हो, ऐसी स्पीड में चलती हो चलती है, और तुम गाड़ी के डिब्बे में बैठ करके फिर धक्का लगाते हो कि देखो मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो आस्पद बात बच्चों जैसे, गाड़ी तो अपने कारण से चलती है बराबर। इसलिए जब द्रव्य को द्रव्य में श्रद्धा ज्ञान द्रव्य की ओर हुआ, पर्याय उसमें अंतर्मग्न हुई, क्या हुआ उस वक्त कि पर्याय जो द्रव्य में अंतर्मग्न हुई श्रद्धा ज्ञान की, फिर उसको फिराने की कहां बात रहती है, और वो पर्याय स्वयं द्रव्य के काबू में आई गई है। फिर कोई नया काबू राग का इच्छा का लगाना नहीं है, कंट्रोल में आई गई है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, ऐसा ही एक प्रश्न है, सम्यक दृष्टि मैंने द्रव्य दृष्टि, जिसको द्रव्य की श्रद्धा है, द्रव्य की दृष्टि है, तो हमेशा हमेशा अपने द्रव्य में सावधान है। किसमें सावधान है? द्रव्य में सावधान है, और पर्याय में असावधान है, बराबर। द्रव्य है वो निश्चय है, निश्चय में वो सावधान है, और व्यवहार में पर्याय है सो व्यवहार है, व्यवहार में सावधान नहीं है, बराबर। अच्छा, द्रव्य में सावधान किससे सावधान है? पर्याय से ना। तो जब जो पर्याय द्रव्य में सावधान है, इस पर्याय में तुम्हें कहा क्या कहा सावधानी रखने की बात बाकी रहती है? फिर पर्याय में कैसे सावधानी की बात बाकी रहती है? तो फिर पर्याय में सावधान रहने की जगह ही कहां रही? जिसमें सावधान होना है, ऐसी जो पर्याय बिगड़ नहीं जाए, हम ध्यान रखें पर्याय का, बिगड़ नहीं जाए ध्यान रखें, लेकिन वो पर्याय तो द्रव्य में सावधान है, फिर उसमें सावधान होने की जगह ही कहां है? इसलिए ज्ञानी द्रव्य में सावधान है, पर्याय में सावधान रहने की कोई आवश्यकता बाकी रहती नहीं, फिर वो प्रश्न उठाने की जरूरत क्या है? अज्ञानी को द्रव्य को पहला जानना है, द्रव्य का ज्ञान पहले करना है, तो सावधानी आ जाएगी, जानते ही सावधानी आ जाएगी। तो दृष्टांत या आर्थिक गाथा में कि द्रव्य तो कोई नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन क्या हुआ है कि भूल गए हैं। जैसे हमारे हाथ में सोना है, जेवर है, लकड़ी है, हमारे हाथ में, हम भूल गए। जब पता चला कि हमारे हाथ में है तो पहला क्या भाव आएगा? सावधानी का भाव आएगा। ये अपनत्व होकर के सावधानी करना, ये ज्ञान का स्वभाव है। जिस चीज को भूला है उसी को पता लग जाएगा तो सावधानी पहले आएगी, पता लगते ही सावधानी आएगी पहले, बस बात खत्म होगी।
सावधानी
रखनी पड़ेगी, नहीं रखनी पड़ेगी। द्रव्य में सावधान हुआ, कैसे सावधान हुआ कि पर्याय से हुआ, पर्याय स्वयं ही द्रव्य में सावधान हुई, फिर इस पर्याय की सावधानी करने की क्या
आवश्यकता
है? द्रव्य में सावधान होना यानी ज्ञानी हो जाना, बस बात खत्म। पर एक समय में ज्ञानी होने में कितना समय लगता है? इतना समय नहीं लगता है, जिस समय में मैं अज्ञानी हूं बस एक ही समय में मैं ज्ञानी बन सकता हूं, अगर सावधान रहा हुआ तो। द्रव्य को चला गया ऐसी बात तो नहीं है, भूला हुआ है इसलिए खोया हुआ ऐसा कहते हैं। अगर तुम्हें ये बात समझ में आई कि तुम तेरे द्रव्य को भूला हुआ है तो उसको नहीं भूलना, बस उसी समय वो उसकी सावधानी आ गई, ज्ञानी हो गया, तो अज्ञानी मिट गया, एक समय लगेगा। ऐसा भगवान का उपदेश है, ज्ञानी बनाने के लिए एक समय में ज्ञानी बना दे, ऐसा भगवान का उपदेश है, जिनेंद्र का ये उपदेश है। इतनी देर के हमारी दानत अच्छी, नियत अच्छी नहीं है, यही इसलिए देर लगती है, हमारी नियत अच्छी नहीं है, हम बात तो अच्छी करते हैं लेकिन नियत अच्छी नहीं रखते, बोलते भीतर में कोई बहुत गड़बड़ी रख लेते हैं, और ऊपर से शो बराबर करते हैं कि हमको तो कल्याण करना है, हमको तो सम्यक दर्शन करना है, हमको तो मोक्ष चाहिए, लेकिन भीतर में हमारी नियत ठीक। गोपाल देव कहते हैं शुद्ध अंतकरण से, क्या शब्द रखा है उन्होंने, अगर कोई जीव शुद्ध अंतकरण से अपना कल्याण करना चाहते हैं या अपना अनुभव करना चाहते हैं तो उसको कोई दुर्वृत्ति नहीं है। जो भी गड़बड़ी है वो मलिन अंतकरण की है, यही जांच करना है कि हमारा अंतकरण मलिन है तो कहां से होगा। अगर हमारा अंतकरण शुद्ध है कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, ऐसी बात है।
दो जगह सावधानी एक ही साथ में
तो
होती नहीं,
वो सकती नहीं है, हो ही नहीं सकती, ऐसी बात है। इसलिए पर्याय स्वयं काबू में आई गई है। पर्याय कहां से आती है, कहां से आएगी पर्याय, आएगी कहां से, द्रव्य में से, उसका उद्भव स्थान तो वो है। इसलिए जहां अखंड द्रव्य को काबू में लिया दृष्टि ने, चिंता ज्ञान ने स्वीकार कर लिया कि मैं ऐसा हूं, वहां पर्याय स्वयं काबू में आई गई। अर्थात द्रव्य का आश्रय से पर्याय सम्यक निर्माण होने लगी, बस बात खत्म, फिर इसकी सावधानी करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत न्याय दिए इस विषय पर गुरुदेव ने, चारों पड़कों से इतने न्याय दिए, इतने न्याय दिए, अद्भुत से अद्भुत विषय खोला है। हम तो पहली दफे पढ़ा, जब पहली दफे नया प्रवेश के काल में, हमको तो इतना गुरुदेव पर बहुमान हुआ, हम गुरुदेव के सामने बोला वो बात जाकर के, क्या निकाला है आपने, ये कहां से निकाला है, ऐसी ऐसी बातें, इतने चारों पड़कों से इतने इस बात को स्पष्ट कर दिया है, क्रमबद्ध वाली बात, अद्भुत न्याय निकाले, इतने न्याय निकाले, इतने पड़के से निकाले, इतना इस विषय में गुरुदेव का उपयोग चला है, आश्चर्य हो जाए कैसे निकाली है बात, कोई पड़खा बाकी नहीं रख पाया समाधान के लिए। इतने सारा इसको, इस पर तो सारा किताब इस वक्त निकला है स्पेशल। जहां स्वभाव निश्चित हुआ, निश्चित किया, वहां मिथ्या का ज्ञान मिट करके नाश हो करके सम्यक ज्ञान हुआ। कितनी देर में, एक ही समय है। प्रकाश प्रकट होए, अंधेरा जाने में कितनी देर लगे, अंधेरा जाने में उसी समय में जाएगा, दूसरे समय में नहीं जाएगा। पहले प्रकाश हो जाए बाद में अंधेरा जाए, ऐसा कभी बनता नहीं, उसी काल में चला जाता है।
इसमें आया है ये जो पर्याय के जितने भी न्याय दिखते, पर्याय की उपेक्षा करिए,
द्रव्य की अपेक्षा और पर्याय की उपेक्षा, ये सिद्धांत है। और द्रव्य की अपेक्षा कौन करते हैं, कौन करता है, पर्याय करता। फिर इसकी अपेक्षा क्यों, जो स्वयं अपेक्षा करने वाली है इसकी अपेक्षा क्यों, इसकी अपेक्षा करने का कोई अवकाश ही रहता नहीं, जगह ही नहीं रहती, तो अपेक्षा करने लग जाती है, फिर कौन से पर्याय इसकी अपेक्षा करें, सवाल बाकी कोई रहते नहीं है।
उपेक्षा करने के लिए क्या जरूरत है, उपेक्षा भी क्यों करना,
नहीं उपेक्षा हो जाती है, करना तो बोलने में आता है, लेकिन वो तो हो जाती है, करना ऐसा सिर्फ बोलने में आता है। द्रव्य की अपेक्षा हुई, पर्याय की अपेक्षा स्वतः ही हो गई, वो चेक करने के लिए वो बात है कि देख लेना ऐसा ही हो जाएगा, तो चेक करने की बात है, बाकी करना फलना कोई रहता बाकी नहीं रहता, कुछ बाकी नहीं रहता। जब उपेक्षा करना बाकी नहीं रहता तो फिर अपेक्षा करने का तो सवाल नहीं होता, मजदूर रहेगी फिर, ऐसी बात है। समय हुआ है, बहुत सी बात है, न्याय बहुत बड़ी बड़ी न्याय न्याय
गुरुदेव।